الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متخاصمون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو تھوڑی تاخیر سے آج شروع کر رہے ہیں اس کے لیے معذرت سب سے یہ جو آیات پڑھی تھی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 35 تک تو ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو معارف و مسائل شروع کیے تھے کل کی کلاس میں تو اس میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس والی آیت آیت نمبر 31 اس کی تفسیر میں پھر کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے معروف مسائل بیان فرمائے ہیں ساری آیات کے نہیں بیان کیے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس میں کہ جب تم سب مر جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے تو ثم اس کے بعد کیا ہوگا انکم یوم القیامتی کہ قیامت کے دن تم لوگ عند ربکم اپنے رب کے پاس ان کو میوٹ کر دیں پلیز اپنے رب کے پاس تختصمون تم جھگڑا کرو گے ہے نا تو اب یہ جھگڑا کرنے کی بہت ساری شکلیں ہوں گی قیامت کے دن تو اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ یہ جو مشہور حدیث ہے آپ سب نے یقیناً سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون مفلس ہوتا ہے مفلس کون ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نقدی رقم ضرورت کا سامان وغیرہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں ویسے تو کفار بھی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی شامل ہیں اگرچہ کہ وہ امت دعوت کہلاتے ہیں اور مسلمان امت اجابت کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہے تو سب کے سب ہی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد اس دنیا میں موجود رہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ٹھیک ہے تو ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا نہیں ہو پا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جب تم سب مر جاؤ گے تو قیامت کے دن تم سب کے سب اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے تو اس جھگڑے کی مختلف شکلیں ہوں گی تو اس کے تحت نبی علیہ صلی السلام نے جو حدیث بتائی حدیث بیان فرمائی تو وہ یہاں پر انہوں نے نقل کری ہے کہ مفلس کون ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی کسی پر تہمت باندھی کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا کسی کو قتل کرایا کسی کو مار پیٹ سے ستایا تو یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے ٹھیک ہے یعنی جس کے اوپر بھی جس طرح سے بھی اس نے ظلم کیے ہوں گے وہ پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور اس کی حسنات یعنی اس کی جو یہ نیک اعمال تھے مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کافر کی بات نہیں ہو رہی مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے حسنات ان میں تقسیم کر دی جائیں گی پھر جب یہ حسنات ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کو کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ حقیقی مفلس ہوگا تو اس وجہ سے نا یہ بات ہمارے مشائخ جو ہے نا مشائخ کا خاص طور پر کیا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف ہمیں نیکیاں کرنے کا نہیں بتاتے کہ نیکیاں کرو یہ عبادت کر لو فلانا جو ہے وہ یعنی نفلیں پڑھ لو और ये तिलावतें कर लो और ये वजीफे पढ़ लो और हज कर लो और उम्रे कर लो और 17 सैरात कर लो। नहीं, वो सिर्फ ये नहीं बताते बल्कि क्या बताते हैं, ये आपसे सवाल है क्लास क्विज, हमारे मशायख सिर्फ नेकियां करने का नहीं बताते या नेकियां करने पर खाली एम्फेसिस नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ किस चीज के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, एक मिनट, किस चीज पर एम्फेसिस करते हैं? जी, ख्वातीन में कोई, मर्दों में तो आ गया जवाब, गुनाहों से बचना, नेकियां बचा कर जाना। जी बस बस बस, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, नेकियों को बचाने के ऊपर भी एम्फेसिस करते हैं कि हमने सिर्फ नेकी करनी नहीं है बल्कि उन नेकियों की हिफाजत भी करनी है। अब नेकियां जाया इस दुनिया में भी कुछ अमाल से हो जाती हैं, ठीक है, जैसे इंसान नाउज बिल्ला कुफर का मुर्तकिब हो जाए तो उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी, है ना, लेकिन आखिरत के दिन ये नेकियां कैसे हमारे पास से जाया होकर के किसी और के पास चली जाएंगी अगर हमने दूसरों पर जुल्म भी साथ साथ जारी रखा होगा, तो ये नेकियां पर हमारे पास रहेंगी नहीं बल्कि ये किसी और के काम आएंगी, हमारे काम नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो फिर ऐसी नेकियां करने का हमें क्या फायदा हुआ? तो भाई नेकियां करने से ज्यादा एम्फेसिस मशायख के यहां, नेकियां करने से ज्यादा एम्फेसिस वो नेकियां बचाने पर होता है। यानी एक तो इंसान ऐसे गुनाहों के का मुर्तकिब ना हो कि जो उसकी नेकियों को जाया कर देते हैं, और खुसूसन दूसरों के साथ मामलात अपने अच्छे रखे, है ना, कि जुल्म का मुर्तकिब ना हो, वरना इसकी नेकियां जाया हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है कि जिस एस्पेक्ट को ना हम भुला देते हैं, शैतान हमें भुलवा देता है असल में। तो जो मशायख होते हैं जो कि शैतान की जिद होते हैं, शैतान का ये ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं, वो हमारी नेकियों को बचाने के ऊपर एम्फेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, काश कि हम इन मशायख से फायदा उठाने वाले बन जाएं। और फरमाया था जो कि हमने हदीस अगली पढ़नी शुरू करी थी कि तिबरानी ने एक मोतबर सनद के साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अल्लाह ताला से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे पहले जो मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा वो मर्द और उसकी बीवी का होगा, और बखुदा के वहां पर जुबान नहीं बोलेगी बल्कि औरत के हाथ पांव गवाही देंगे कि वो अपने शौहर पर क्या क्या ऐब लगाया करती थी। अब ये ऐब लगाने वाला जो मामला होता है, ये एक तो वो होता है कि शौहर के पीठ पीछे ऐब लगाना, कभी किसी के सामने उसकी बुराई, कभी किसी के सामने उसकी बुराई, है ना, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, सहेलियों के सामने, हत्ता के पड़ोसियों के सामने, हत्ता के कुछ तो ऐसी भी होती हैं कि अगर किसी क्लिनिक के अंदर जाकर के बैठी हो ना बाहर इंतजार करने के लिए, और उस वक्त कोई दूसरी औरत आकर के साथ में बैठ जाए, तो उसके साथ भी अपने घर के सारे मामला शुरू, है ना, और शौहर के बारे में और सास के बारे में और फलाने के बारे में, ढिमकाने के बारे में, है ना, सब कुछ ही खोल देते हैं, है ना। तो इस तरह से भी ऐब लगाने की एक शक्ल है, हर एक के सामने ऐब बयान करना, और एक और शक्ल क्या है कि उसके सामने ऐब बयान करना उसके, कि तुमसे तो मुझे कभी कोई सुख ही नहीं मिला, तुमने मुझे कभी ला करके दिया ही कुछ नहीं, है, चंद ठेकरियां और चंद बेकार के कपड़े, तो वो भी कभी नहीं ला करके दिए। तो इस किस्म का हर वक्त शौहर को जो है वो नेगेटिवली ही, उसके सामने हर वक्त नेगेटिव बात ही करना, ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो ऐब लगाने के अंदर आ जाती हैं, है ना। और औरतें, इनके पास फिजिकल पावर वैसी नहीं होती जैसे कि मर्दों के पास होती है, तो हाथ से नहीं मार सकती, लेकिन जुबान की पावर बहुत तेज होती है, और जुबान की काट जो है वो हाथ की काट से भी ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि हाथ की जो काट होती है, हाथ से जो लगाया हुआ जख्म होता है, वो कुछ अरसे में मुंदमिल भी हो सकता है, वो कुछ अरसे में फिर भर भी सकता है, लेकिन जुबान से लगाया हुआ जो जख्म होता है वो या तो कभी भी नहीं भरता, या अगर भरता भी है तो बहुत फिर उसके लिए जतन करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के जुबान से लगाया हुआ जख्म भरता है। नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस बार बार मशायख हमें इसी वजह से समझाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जुबान का जिक्र पहले किया और हाथ का जिक्र बाद में किया, क्योंकि जुबान जो है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ख्वातीन की जुबान जो है वो, अब चाहे माने अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बहरहाल मानना तो पड़ेगा, और मानती हैं भी वैसे कि भाई हाँ मेरी जुबान बहुत चलती है, ठीक है। तो इसका फिर हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर दूसरी तरफ आगे नबी अलैहिस्सलाम की जी मर्दों का मामला किया कि मर्द बीवियों को अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं, तो इसका भी हिसाब मर्दों को सबसे पहले देना होगा, ठीक है। अब ये अजियतें किस शक्ल की होती हैं, या तो दो शक्लें होती हैं एक शादीशुदा घराने की, एक तो या तो वो अलग रहते हैं, है ना, सिर्फ मियाँ बीवी रह रहे हैं और फिर बाद में उनके बच्चे हुए या अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक और शक्ल ये होती है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, है ना, साथ माँ बाप भी रह रहे हैं और कुछ जगहों पर जो है वो बहनें भी रहती हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो अब मर्द जो है वो अजियत किस तरीके से पहुंचाते हैं कि मर्द बीवी से वो डिमांड्स करते हैं कि जो के जायज नहीं होते, ऐसी डिमांड्स करते हैं कि गोया के बीवी नहीं है, कोई बांदी है, कोई गुलाम है, कोई कोई बल्कि गुलाम से भी बदतर कोई जानवर है, इंसान नहीं है बल्कि जानवर है, और उससे ऐसी ऐसी डिमांड्स करते हैं अपनी खिदमत, तो क्या पूरे खानदान की खिदमत, है ना, पूरे खानदान की खिदमत करने के लिए उसको जो है ना वो खरीद करके लेकर के आए किसी तरीके से अपने घर में, हालांकि जहेज भी वही लेकर के आती है, ये भी नहीं कि जी कुछ पैसे दे करके लेके आए थे जैसे कुछ कल्चर्स के अंदर होता है, पठान कल्चर्स में सुना है कि जी बीवी को जो है ना पैसे दे करके लेके आते हैं, मतलब मेहर के अलावा भी, है ना, तो वो बड़ी प्राइस लगती है औरत की। लेकिन ज्यादातर कल्चर्स के अंदर, खुसूसन जो इंडियन कल्चर्स हैं वहां पर और भी ज्यादा, और पाकिस्तान में भी ऐसे कल्चर्स हैं कि जहां पर के जहेज जो है वो तो औरत लेकर के आ रही होती है, तो ये भी नहीं कि जी पे करके लेकर के आ रहे हैं कि चलो जी गुलाम खरीद कर लेकर के आए हैं, वो खुद ही अपना पैसा भी लेकर के आ रही है, खुद ही अपनी चीजें भी लेकर के आ रही है, और फिर उसके बाद उससे उसके ऊपर जुल्म करना, उससे एक्सपेक्टेशंस करना, तो ये सारी चीजें जो है ना दुनिया के अंदर तो चल जाएंगी लेकिन आखिरत में ना इनका हिसाब देना पड़ेगा, और उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत बहुत कड़ा अजाब है इसके लिए, बहुत सख्त अजाब है इन सब चीजों के लिए ना। तो अब ये चीजें हम कैसे इन चीजों को रिजोल्व करें ना, कैसे खत्म करें, क्योंकि हम जैसे कल बात हुई थी कि हमें मुआशरती इस्लाह की बड़ी फिक्र होती है कि हमारा मुआशरा ठीक हो जाए, हमारी सड़कें ठीक हो जाए, हमारा ट्रैफिक का निजाम ठीक हो जाए, हमारा जो है वो पुलिस का निजाम ठीक हो जाए, हमारा जो है स्कूलों का निजाम ठीक हो जाए, हमारा जो है वो दफ्तरी निजाम ठीक हो जाए और अदालतें ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो इनकी बुनियाद है, इकाई है, यूनिट है सोसाइटी का, जो कि घर है, वो घर जब तक ठीक ना हो तो उस घर के अंदर से निकलने वाली जो ये मैन फोर्स है, ये जो ह्यूमन फोर्स है जिसने आगे जा करके सारी चीजें चलानी है ना, स्कूल सिस्टम से लेकर के फौज और पुलिस और अदालत और हर चीज उन घरों से ही निकलकर लोगों ने संभालनी है ना। अब अगर वो उस घर के अंदर से एक बुरी पर्सनैलिटी बन करके जब वो निकलेंगे तो उन्होंने क्या फिर आगे जाकर के खैर फैलानी है, क्या लोगों को फिर जो है वो खैर बांटनी है, जब घर के अंदर पिट पिटा करके और जो है वो झगड़े के माहौल के अंदर पल बढ़ करके जवान हुए हैं तो उन्होंने आगे जाकर के भी झगड़ा ही करना है ना। आपने देखा होगा एक बड़ी पक्की बात है, इवन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके नजदीक भी ये पक्की बात है और हमारे मशायख तो पहले से ये बातें बता रहे हैं हमें कि अगर आप किसी बच्चे को मारेंगे ना घर के अंदर, जो मारपीट वाला मामला होता है बच्चों को मारने वाला, ठीक है, तो जिसको आप मारते हैं ना वो बच्चा फिर अब क्या समझना शुरू हो जाता है, उसकी ब्रेन के अंदर ये चीजें सेट हो जाती हैं कि देखो जब कोई गलत काम किया जाए तो उसका उसका रिएक्शन क्या होता है, मार पड़ती है, अब्बा से मार पड़ती है, अम्मा से मार पड़ती है, ठीक है ना। जब मैंने कोई ऐसा काम किया जो कि अम्मी को पसंद नहीं आया, अम्मी ने मुझे मारा, जब कोई मैंने ऐसा काम किया कि अब्बू को पसंद नहीं आया, अब्बू ने मुझे मारा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा तो लर्न कर रहा है ना, उसका तो ये लर्निंग कर्व है ना, ठीक है, तो अब वो ये सीख गया है कि जी मारना जो है ना यही एक रिएक्शन है गलत काम का। अब क्या होता है, जब इस बच्चे से कोई छोटा बच्चा उस घर में हो या बाहर हो, जब वो कोई ऐसा काम करता है जो इस बच्चे के नजदीक गलत है, इस बच्चे के नजदीक वो काम गलत है, तो अब इसने क्या सीखा है कि गलत काम के ऊपर मारना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे मारती हैं, मेरे अब्बू मुझे मारते हैं, तो अब ये बच्चा जो है ना ये फिर अपने से छोटों को जिसके ऊपर इसका जोर चलता है, जिन बच्चों के ऊपर, चाहे पड़ोस के बच्चे हों, चाहे अपने खानदान के बच्चे हों, जिनके ऊपर इसका जोर चलता है, अब ये भी उनको मारेगा या मारेगी। पहले आप लोगों को कह दिया था ये बच्चों की क्लास नहीं, उनको मत बैठाइए इस क्लास के अंदर, ठीक है? वरना फिर बच्चों ने भी फिर बाद में सुनानी होती है सही तरीके से, ठीक है? तो अब ये बच्चा भी जो है ना, ये मारना सीख जाता है, ये इसी को सोल्यूशन समझता है, मसलों का हल समझता है। अब ये बच्चा जब बच्चा है तो ये बच्चों को मारेगा, जब ये बड़ा होगा है, जब इसकी उम्र बड़ी होगी और इसके कमजोर, इससे कमजोर लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो अब ये उनको भी मारेगा, अब ये उनको भी टीज करेगा, जहां जुबान से टीज करता होगा वहां जुबान से टीज करेगा, जहां आमाल से हाथ पैर से टीज कर सकता है वहां पे हाथ पैर से मारेगा। अब ये बच्चा अगर किसी पब्लिक पोजीशन पे जाकर के बैठ जाएगा, है ना, किसी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा पढ़ लिख करके किसी तरीके से, तो अब ये वहां पर क्या करेगा, ये वहां पर भी यही करेगा, है ना, क्योंकि घर से इसकी ऐसी तरबियत हो चुकी है, इसका दिमाग ऐसा बन चुका है। तो देखिए ये जो चीजें होती है ना, जो घरों में हम करते हैं, हम अपनी इसलाह के ऊपर बिल्कुल मुतवज्जे नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं कि वो अपनी इसलाह कर ले तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा। तो इनके इस मखमसे के अंदर जो है ना, वो हम आगे नस्लों को खराब कर रहे होते हैं, हम अपनी नस्लों को खराब कर रहे होते हैं, हम अपने माहौल मुआशरे को खराब कर रहे होते हैं, हम अपने पूरे मुल्क को खराब कर रहे होते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया को खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये बच्चा जो है वो बाद में जाके किसी और बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया, तो अब इसने दूसरे मुल्कों को भी फिर खराब करना है ना। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर खुसूसन, ये तो बहुत ही, यानी वेस्टर्न कंट्रीज तो बुराई की आखिरी हद को छुए हुए है ना, तो अब वहां पर ऐसे लोग जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ऐसे लोग जो है वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आ जाते हैं, और उनके पास बहुत सारा फिर हथियार भी होता है, बहुत एम्यूनिशन होता है इनके पास। तो अब ये क्या करते हैं, अब इन हथियारों की बुनियाद पर फिर ये दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनकी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी होती है कि अगले बंदे को अजियत दो, उसको दबा करके रखो। अब ये पूरे पूरे मुल्कों की पॉपुलेशन को दबा करके रखते हैं इस तरीके से, लेकिन असल इनकी बुनियाद क्या होती है, इनकी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जो कि उनके घरों के अंदर बनी होती है, बचपन में इनकी ये साइकोलॉजी ऐसी बनी होती है, ठीक है? तो अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते हैं ना अपने कुरान के अंदर, ज़हरा अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर, कि फसाद फैल गया खुश्की के अंदर भी और तरी के अंदर भी, बिमा कसबत अईदिन नास, इंसानों के हाथों की कमाई की वजह से। तो ये सिर्फ वो ऊंचे ऊंचे दर्जे के गुनाह नहीं होते, बल्कि घरों के अंदर जो गुनाह हो रहे होते हैं उनकी वजह से। तो अल्लाह ताला ने इन सब चीजों का हिसाब लेना है कि मैंने तुम्हें जो अपनी दुनिया के अंदर भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा था ना एक दूसरे का खून करने के लिए, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए, ठीक है? तो इस वजह से हिसाब शुरू कहां से होगा, बीवी और शौहर से हिसाब शुरू होगा, ठीक है? अब इसका इलाज कैसे करें भाई, इसका इलाज करने के लिए सबसे पहले तो अगर मुमकिन है, अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, तो भाई शादी करने से पहले ये चीजें सीखनी होती हैं, इंसानियत सीखनी होती है और अपने बच्चों को इंसानियत सिखानी होती है इससे पहले कि आप उसकी शादी करें, ठीक है ना? स्कूल, कॉलेज और जॉब, ये फकत क्राइटेरिया नहीं है शादी के लिए तैयार हो जाने के, हाँ भाई अब इसकी जॉब लग गई है अब तो इसकी शादी करो, या ये बच्ची जो है वो अब इतनी बड़ी हो गई है, या ये कि अब जिसने इतनी डिग्रियां पढ़ ली अब तो उसकी शादी करनी चाहिए, इतनी डिग्रियां मिल गई हैं इस लड़की को उसकी शादी करनी चाहिए, है ना? ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हमने इंसानियत सिखा दी है कि नहीं सिखाई है, अल्लाह का नेक बंदा बनना सिखाया है कि नहीं सिखाया है, दूसरों का हुकूक, दूसरों के हुकूक सिखाए कि नहीं सिखाए, अगर सिखा दिए अब ये शादी के लिए तैयार हो गया, अब ये शादी के लिए तैयार हो गई है। तो शादी से पहले ये चीजें देखनी होती है, ठीक है? नहीं देखी और आपने उसके बगैर कर दिया ना, तो उसके बाद फिर आगे तवक्को ना रखें कि जी आगे से सारा काम बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। आपने तो अल्लाह की ख्वाहिश का कोई ख्याल रखा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि दीन देख करके शादी करो, आपने नबी अलैहिस्सलाम को तो नाउज़ुबिल्लाह किसी काबिल नहीं समझा अपने अमल के जरिए से। हाँ नहीं नहीं, फौरन इसके ऊपर लोग चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, नहीं 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 तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो,
بھائی عمل کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں. عملاً تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل پسے پش ڈال کے رکھا ہوا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریکمنڈیشنز کری تھیں ہمارے نزدیک ان ریکمنڈیشنز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو ہم تو ایسے جا کر کے شادی کر دیتے ہیں خاندان دیکھ کر کے. بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو اپنے خاندان میں شادی کرنے کا, یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے شادی کر رہے ہیں, کس قسم کا انسان ہے وہ, کس قسم کی انسان ہے وہ, یہ نہیں دیکھتے. خاندان میں شادی کرنی ہے جا کر کے, اور یا یہ کہ مال پیسہ دیکھ کر کے یا خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرنی ہے نا. تو اب یہ چیزیں دیکھ کر کے شادی کرو گے تو پھر اندر کی خوبصورتی کدھر سے آئے گی. تو پہلے سے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ حقوق جو سیکھے ہوتے ہیں اگر پہلے سیکھنی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں سیکھیں تو شادی کرنے کے بعد سیکھنا ہوتا ہے ان حقوق کو کہ جی بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, اور بیوی کو سیکھنا ہوتا ہے کہ شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. ہمارے یہاں تو حقوق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اپنا حق مانگنا اور اپنا حق چھیننا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو یہ ہمارے یہاں سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا حق کا تو حساب اوپر نہیں دینا ہوگا, تم نے اپنا حق چھینا کہ نہیں چھینا. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تم نے اپنا حق حاصل کیا کہ نہیں کیا, بلکہ تم نے دوسروں کا حق دیا کہ نہیں دیا. تو آخرت کی طرف کوئی نظر ہوگی تو پھر دوسروں کے حق کی فکر ہوگی نہ کہ اپنے حق کی فکر. تو حقوق کا معلوم کرنا کہ جی کیا ہے, جو نہیں ہے میرے حقوق نہیں ہیں تو ان کی ڈیمانڈ نہ کرنا, ہاتھ مروڑ کر کے اگلے بندے کا اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ اوپر بھی کوئی ہے جو کہ پھر میرا بھی ہاتھ مروڑے گا. ہاتھ کیا مروڑے گا, اللہ تعالیٰ تو پھر بہت کچھ مروڑتے ہیں اس کے بعد نا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آخر میں جو سب سے اہم چیز اس کے بعد جو کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایسنشیل, دا موسٹ ایسنشیل انگریڈینٹ, اچھی جگہ شادی کر لینا. ٹھیک ہے نا, یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا اچھی جگہ شادی کرنا. دوسری چیز حقوق کا لحاظ کرنا, کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے, ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنا بوتھ مین اینڈ ویمن, شوہر اور بیوی دونوں کے لیے. اور تیسری چیز, تیسرا سب سے ایسنشل انگریڈینٹ کہ پہلے دو کام اپنے صحیح صحیح کر بھی لیے ہیں, صحیح جگہ شادی کر بھی لیے اور آپ نے حقوق کا خیال کر بھی لیا ہے, پھر بھی یہ تیسری چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا, گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا. وہ تیسری چیز کیا ہے, کون سا ایسا تیسرا انگریڈینٹ ہے کہ اگر دو پہلے والے کام صحیح صحیح کر بھی لیے پھر بھی اس تیسری کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. وہ تیسری چیز کیا ہے, کوئی آپ میں سے بتائے. ارینجمنٹ آف فیڈ بیک, صبر, درگزر کرنا. ماشاءاللہ یہ اچھے جواب آ رہے ہیں بہت. ٹھیک ہے, معاف کرنا, لیکن ان سب کا ایک لفظ جو ہے نا وہ ان سب کو کور کر لیتا ہے, ایک لفظ. ٹھیک ہے, یعنی صبر کو بھی, معاف کرنے کو بھی, اور درگزر کرنے کو بھی, برداشت کرنے کو بھی. ٹھیک ہے نا, یہ سب مختلف جوابات آئے, کچھ جو ہے وہ پرائیویٹلی آئے تو اس وجہ سے باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک چیز ان سب کو کور کر لیتی ہے, وہ کیا ہے, تحمل مزاجی. ماشاء اللہ, تحمل مزاجی. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے زبردست, صحیح ہے, تحمل مزاجی, حلم, فوربیئرنس. اگر یہ نہ ہونا تو پھر اچھے ماحول بھی برے بن جاتے ہیں, دیندار ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے. حقوق کا خیال رکھنے کے باوجود, حقوق کا علم ہونے کے باوجود, نیکی تقویٰ دیکھ کر کے شادی کرنے کے باوجود انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہر انسان غلطی کرتا ہے, چاہے وہ نیک پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو, اس سے غلطی ہوگی. رائٹ, غلطی, انسان غلطی کا پتلا ہے, ہر انسان سے غلطی ہوگی, بیوی سے بھی ہوگی, شوہر سے بھی ہوگی. تو دوسرے پارٹنر کو, سپاؤس کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے. امیڈیٹ ریاکشن, چاہے وہ ہاتھ سے ریاکشن ہو چاہے زبان سے ریاکشن ہو, اس کو روکنا پڑتا ہے حلم کے ساتھ. ہے نا, بچے سے بھی غلط, بچے سے تو سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے, لیکن تحمل مزاجی اگر ہوگی تو یہ پھر انتظار کرے گا, اصلاح کرے گا یا اصلاح کرے گی, لیکن ریئیکٹولی نہیں کرے گی بلکہ پرویکٹولی موقع محل دیکھ کر کے اصلاح کرے گی بچے کی, یا کرے گا بچے کی اصلاح کرے گا یا بیوی کی اصلاح کرے گا, موقع دیکھ کر کے کرے گا. اس وجہ سے یہ جو تحمل والی صفت ہے نا, اس کے تو یعنی انسانوں کے ساتھ معاملے میں تحمل کے بغیر خیر نہیں ہو سکتی. خیر کے لیے جو شرط ہے انسانی ماحول کے اندر وہ تحمل ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ہیومن سوسائٹی میں, چاہے وہ گھر کے لیول پر ہو چاہے وہ ملک کے لیول پر ہو, جو انگریڈینٹ آف سکسیس ہے یا گارنٹی آف سکسیس ہے, کامیابی کی ضمانت, وہ تحمل مزاجی ہے. اب چونکہ اس طرح کی بات آ گئی ہے تو اس وجہ سے سوال کہ یہ تو ہو گیا نا, مخلوق کے ساتھ سکسیس تحمل مزاجی, خالق کے ساتھ سکسیس کے لیے کیا چیز اسینشل انگریڈینٹ ہے؟ خالق کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ تو ہے تحمل مزاجی. خالق کے ساتھ آپ تحمل مزاجی کریں گے؟ نہیں, خالق کے ساتھ تحمل مزاجی والا کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تحمل مزاجی خالق, نعوذ باللہ, خالق غلطیاں کرتے ہیں جو آپ تحمل مزاجی کریں گے خالق کے ساتھ, نعوذ باللہ, ہے نا. خالق کے ساتھ سکسیس کی کیا گارنٹی ہے؟ جی, خشیت. اس کو خشیت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, خشیت. اللہ تعالی کے سامنے عاجزی, انکساری, خشیت, اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا, یہ ہے اللہ کے ساتھ کامیابی کی گارنٹی, ٹھیک ہے نا. لقد کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خشیت حاصل کری, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشیت والا معاملہ رکھا, ٹھیک ہے. تو خالق کے ساتھ یہ ہے گارنٹی آف سکسیس, اور مخلوق کے ساتھ تحمل مزاجی یعنی برداشت, ٹھیک ہے, صبر و برداشت اور وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تو بھائی سیکھنی پڑتی ہے نا, یہ دنیا کی تو ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور وہ ہم سیکھنے کے لیے اپنا خون پیسہ, خون پانی ایک کر دیتے ہیں, یا خون پیسہ ایک کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیزوں کے لیے تو ہم نہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سیکھنے کا ایک پورا پروسیس ہے جس کو کہ تربیت کہا جاتا ہے, جس کو کہ تزکیہ نفس کہا جاتا ہے, تصفیہ قلب کہا جاتا ہے, تصوف کہا جاتا ہے, اور یہ سارے ٹرمز ہیں جو کہ ہمارے دین کے اندر اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ایک سکون والی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی سکون والی زندگی گزارے, تو پھر اس کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا. اور اگر کوئی راضی ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, بے سکونی والی زندگی میں گزار رہا ہوں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی گزار لوں گا, ہے نا, کوئی تیار ہے اس کے لیے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی, کوئی زور زبردستی, کوئی مار پیٹ کی تھوڑی ہے آپ کے اوپر کہ نہیں سیکھنا ضروری ہے. بھائی آپ تیار ہیں بے سکونی کی زندگی کے لیے دنیا میں اور آخرت میں, ٹھیک ہے, من مرضی کی زندگی گزاریں, کریں جو چاہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو بہرحال اتنا آسان نہیں ہوتا کہ خالی کتابیں پڑھ کر کے یا لیکچر سن کر کے بات سمجھ میں آ جائے, اس وجہ سے تھوڑا سا اس کے آگے ایفرٹ بھی ڈالنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اس حدیث کو آگے چلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے جائیں گے, ان کی شکایات کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی اس کے جو امپلائیز تھے, نوکر تھے, خادم تھے, ٹھیک ہے, جو کہ یا تو اس کے یا تو غلام کی شکل میں تھے یا یہ کہ پیڈ امپلائیز تھے, ٹھیک ہے. تو لیکن پیڈ امپلائیز بھی جو ہوتے ہیں, اگرچہ کہ آپ ان کو سیلری دے رہے ہوتے ہیں ان کی خدمت کے عوض, لیکن ان کے اوپر بھی ایک روب اور ایک وہ تو ہوتا ہے نا انسان کا, کہ بھائی اگر وہ کوئی ایسا کام کریں گے جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم ان کو نوکری سے الگ کر دیں گے, نوکری سے نکال دیں گے. اس وجہ سے وہ لوگ بھی دب کر کے رہتے ہیں. تو جب وہ دب کر کے رہتے ہیں تو پھر انسان جو ہوتا ہے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے دوسرے نمبر پر ان کی شکایت کا فیصلہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد عام بازار کے لوگ جن سے اس کے معاملات رہے تھے وہ پیش ہوں گے, اگر اس نے ان میں سے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق دلوایا جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے बाजार में गए और वहां पे किसी को जो है वो धोखा देकर के आ गए, किसी को माल चुरा करके लेकर के आ गए वगैरह, तो उन लोगों का फैसला जो है वो तीसरे नंबर पर किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, है ना, ये शरीयत में भी ऐसा ही है कि सदका भी तुम्हारा सबसे बेहतरीन वो है जो कि तुम अपने घर वालों के ऊपर करते हो। तो अंग्रेजी का वो मुहावरा बिल्कुल हदीस मुबारका के मुताबिक है, लेकिन हिसाब किताब भी घर से शुरू होगा, है ना, घर के नौकरों, घर की बीवी और बच्चों के बाद घर के नौकर, फिर उसके बाद बाहर का मामला शुरू होगा। बच्चों के साथ जो हम जुल्म कर जाते हैं उसका इजाला कैसे कर सकते हैं? बच्चों के साथ जो हम जुल्म कर जाते हैं यानी उनके साथ मारपीट वाला मामला और या वर्बल अब्यूज वाला मामला, या ये कि हम बच्चों को उनके पीयर्स के सामने, उनके हम उम्र दूसरे बच्चों के सामने हम उनको जलील कर जाते हैं, उनकी जो 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 पर्सनालिटी होती है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, है ना, तो एक एक खुद एतमादी वाला जो मामला होता है उसको हम उनको जलील करके एम्बेरस करके उसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत सारे जुल्म हैं जो कि माँ बाप अपने ही औलाद के ऊपर कर रहे होते हैं। अब उसका इजाला कैसे करें? इजाला करने के लिए सबसे पहले हर चीज की तरह सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने माफी मांगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बंदे नहीं हैं। ये बंदे किसके हैं? ये अल्लाह के बंदे हैं। तो हमने अपने बच्चों पे जो जुल्म किया है ना, ये उससे भी ज्यादा बढ़ करके हमने अल्लाह के बंदों पे जुल्म किया। तो इस वजह से सबसे पहले तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी है, इसके लिए अल्लाह ताला के सामने रोना कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या कर दिया था, ए अल्लाह तूने मुझे अपनी नेमतों में से कितनी बड़ी नेमत दी थी, हिदायत के बाद, दीन इस्लाम के बाद, नेकी की तौफीक के बाद, ये जो औलाद की नेमत है ये कितनी बड़ी नेमत है, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते। उनसे पूछे, इनके पास औलाद की नेमत नहीं होती दुनिया में, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, और हमने ए अल्लाह आपकी नेमत के साथ क्या कर लिया है, हमें आप माफ कर दीजिए इसके ऊपर। सबसे पहले माफी तलाफी अल्लाह ताला से, फिर उसके बाद दूसरी चीज अल्लाह ताला से मदद, ए अल्लाह इसका इजाला करने में आप मेरी मदद फरमा दीजिए। ठीक है ना, आप मेरी मदद फरमा दीजिए, आपकी मदद के बगैर मैं नहीं कर सकती कुछ भी। ठीक है, मदद अल्लाह ताला से। तो ये तो हो गया दुआ वाला मामला परवरदिगार के साथ। अब काम शुरू करें। अब काम कैसे शुरू करें? अब ये काम शुरू होता है कि पहली तो ये कि बच्चों के साथ भी जो है ना वो अब ऐसे मामले रखें कि जी जो जो हमने उनको स्कार्स पहुंचाए हैं, जो जख्म पहुंचाए हैं, फिजिकली पहुंचाए हों या फिजिकली ना भी पहुंचाए हों, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी रूह के ऊपर जो हमने जख्म पहुंचाए हैं, अब उन जख्मों के ऊपर मरहम रखना है, उन जख्मों के ऊपर मरहम रखना है। तो अब इस मरहम रखने के लिए जुबान बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, लेकिन एक तो ये मरहम रखने का प्रोसेस तो फौरन शुरू कर देना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इमीडिएटली दूसरा काम शुरू करना है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस फील्ड के बारे में इल्म हासिल करना है, इल्म सीखना शुरू करें। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करना हो। ठीक है, और सीखने के लिए फिर असातिज़ा जो इस टॉपिक के एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाना होगा। इवन किताबों को भी पढ़ना चाहिए, तरबियत औलाद के ऊपर हमारे मशाइख की किताबें मौजूद हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है ना, उन चीजों को, यानी ये है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, तो इन सोर्सेज ऑफ नॉलेज के पास जाकर के इल्म हासिल करना होगा, और फिर किसी ऐसे शख्सियत के साथ कुछ अपना ताल्लुक भी बनाने की कोशिश करें कि जो कि आपको को आपके स्पेसिफिक हालात में, स्पेसिफिक मामलात के अंदर आपको मशवरा भी दे सके। क्योंकि किताबों के अंदर तो आपको एक थ्योरेटिकल तो नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक टू योर ओन कंडीशंस या किसी ओन, यानी आपका एक पर्सनल कोई मामला हुआ उसमें आपको मशवरा शायद किताब से ना मिले, मखसूस हालात जिनको कहते हैं। तो उसके लिए फिर ایسے لوگوں سے پھر اپنا ایک مشورے کا رشتہ بھی بنانا کہ جی جس کے انتحاد آپ پھر مشورہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس یہ ایک انتہائی اہم کام ہے کرنے کا, تو اس کو تو پھر کرنا پڑے گا نا ان سٹیپس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے معافی, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ برہم کا معاملہ شروع کرنا, اور چوتھی بات کہ علم حاصل کرنا شروع کرنا. ٹھیک ہے, بچوں کو ان کی کسی غلطی پر ہم کبھی ہاتھ اٹھا کر مار دیتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہمیں گناہ ملے گا؟ چہرے پہ مارنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, تو چہرے پر مارنا تو پھر گناہ کا باعث بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے مارنے سے بھی منع کیا کہ بچے کے کو کوئی فزیکل انجری پہنچ جائے, تکلیف یعنی چوٹ پہنچ جائے, اس سے بھی منع کیا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کریں گے تو پھر تو وہ گناہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یا بن سکتا ہے کم از کم. لیکن اب یہ جو مارنے والا معاملہ ہے نا, یہ ایکسٹریم لیول پر لاسٹ ریزورٹ کے طور پر مارنا از این آپشن, یہ جائز آپشن ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ایسا نہیں کہ جی بس آپ کا وہی ہے نا کہ جو غلط اس کے اوپر مار, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے نا وہی بات ہے پورا, یہ تو سمجھنے والی چیز ہے نا کہ جی کیسے بچے کو جو ہے وہ پرو ایکٹیولی یعنی اچھی چیزیں بتاتے رہنے سے اس کے اندر اچھی بات کا جذبہ پیدا ہونا, برے سے وہ خود ہی دور رہے, لیکن پھر بھی اگر وہ برا کام کر رہا ہے اس کو زبان سے اچھے سے سمجھا دینا. لیکن ہوتا ہے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بچے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر ڈانٹنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ڈانٹنا جو ہے وہ انتہائی غصے کی شدت میں ڈانٹنا نہیں, بلکہ غصے کو قابو کر کے بغیر غصے کے ڈانٹنا. ٹھیک ہے نا, ایسے ڈانٹنا کہ جس سے کہ اس کی واقعی اصلاح ہو جائے, یہ نہیں کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کے اندر تحمل بالکل نہیں ہوتا تو پھر تو وہ تو غصہ نکالنے کے لیے ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور اس سے پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اور مارنا جو ہے وہ بھی بالکل ایز اے لاسٹ ریزورٹ, کہ جب کہ کوئی اس نے ایسا کام کر دیا ہو جس کے بارے میں آپ پہلے کئی دفعہ منع کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس نے کر دیا. دوسری چیز کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچی, کسی دوسرے کو اس نے یعنی چوٹ لگا دی, کوئی ایسا کر دیا کہ دیکھیں اگر وہ یہ کام جو ہے نا وہ اگر یہ دوبارہ کرے گا تو کل کو پتا نہیں کسی دوسرے کو ایسی تکلیف پہنچ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے, یا کوئی پولیس کیس بن سکتا ہے, یا کوئی اور اس قسم کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اب تو اس کو ایسے بچے کو تنبیہ کرنی پڑے گی نا کہ وہ آئندہ سوچے بھی نہ کسی کو مارنے کا, تو اب اس کو مارنا پڑے گا. لیکن چہرے پر نہیں مار سکتے اس صورت میں بھی, اور ایسی تکلیف نہیں دے سکتے کہ جس سے کہ اس کو پھر کوئی زخم پڑ جائے, تو مارنا تو پڑے گا. یا اس نے جیسے فار ایگزامپل ماں کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کر دی, باپ کو پھر ایسے موقع کے اوپر مارنا پڑے گا بچے کو, تاکہ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ ماں کے ساتھ کبھی وہ اس قسم کا معاملہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس موقع پہ باپ کو مارنا پڑے گا بچے کو ان کنڈیشنز کے ساتھ, لیکن مارنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن مارنا جو ہے نا یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, اور انتہائی صورتوں کے اندر مارنا. تو مارنے سے انکار نہیں ہے, منع نہیں ہے کہ جی مارنا بالکل بھی. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, ان کو بچپن میں بہت مار پڑی ہوتی ہے نا, تو اب جو ہے نا وہ بڑے ہو کر کے وہ ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے تو بچوں کو مارنا ہی نہیں ہے, اب ان کے بچے جو ہے نا وہ جو چاہیں کریں, انہوں نے نہیں مارنا اپنے بچوں کو, کیونکہ ان کو اتنی مار پڑی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا جی میں نہیں اپنے بچوں کو مارنا. اب ان کے بچے جو ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو ذرا اس کی لمٹس ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں, اور اس کو جو ہے وہ تحمل کے ساتھ پھر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بچے اگر حد سے زیادہ نافرمانی کریں تب بھی نہیں مار سکتے. دیکھیں نافرمانی والا معاملہ جو ہے نا وہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچے جب ہماری نافرمانی کرتے ہیں نا, تو اس میں پھر ہمیں پہلے جو ہے نا وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اوپر والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اپنے اوپر والے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ جی بچے حد سے زیادہ نافرمانی کریں اور آپ ان کو مارنا شروع کر دیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ کوئی اچھا معاملہ ہو جائے گا, کوئی وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے, تو हाँ जो अभी बहुत सारी बातें आपके सामने करी है ना कि वो ऐसा काम करें वो ऐसा काम करें तब जो है उनको मार सकते हैं, उस तरीके से तो फिर मारा जा सकता है ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जी वो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं तो इस तरह से मैं उनको मार सकती हूँ, ये नहीं कर सकते। बच्चे अगर स्टेट क्या सताते तो क्या करें और तभी उनकी पिटाई करें तो क्या गुनाह है। अब देखें ये तो हर घर का मसला है ना, बच्चे सताते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी पिटाई कर देते हैं, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई फतवा वाला मामला नहीं है ना कि आप जो है वो फतवा पूछेंगे, मुफ्ती साहब आपको फतवा दे देंगे, हाँ जी जाकर के उनको मार लो ठीक है। ये तो एक तो रोज रोजमर्रा का मामला है, इसको तो वक्त के साथ आपको सीखना पड़ता है इन चीजों को ना। वही कल कल भी किसी ने आखिर में सवाल किया था कि जी कोई हमें क्या इतना नुकसान पहुंचाए कि फिर उसके बाद हमको जवाब दें, तो भाई ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है वो बंदा और क्या वो नुकसान जो है वो जस्टिफाई करता है आपके जवाब देने को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे उसको, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है ना। तो इस वजह से ये फतवे वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो तरबियत वाला क्वेश्चन है, और तरबियत जो है वो तो यानी एक प्रोसेस होता है ना, उसके थ्रू अपने आप को गुजारना चाहिए। इस क्लास में वैसे मामला ये है कि शुरू में भी देर देर से हुई क्लास, फिर बीच में भी एक गैप आ गया और फिर तीसरा एक और गैप क्योंकि लैपटॉप की पावर आज नहीं देख सकते, पावर खत्म हो रही है, इस वजह से जरा पॉज कर दें उसकी पावर केबल लगा दें। एक मिनट एक मिनट, यहाँ एक मैसेज आया हुआ है, एक सवाल मर्दों की तरफ से भी था कि जी जो सवाल है वो ये है कि बाप को बच्चे को ही डांटे, हाँ सूरत में बहरहाल बच्चे को ही रोकना होगा और वहां से जो मसले चल रहे हैं तो उस मसले के लिए फिर दूसरा कोई सलूशन करना होगा, लेकिन बच्चे को तो इजाजत नहीं दे सकते ना हाथ उठाने। अच्छा यहाँ पे और कुछ मैसेज आए हुए थे, बच्चे अगर सताए, अच्छा ये तो हो गया, हजरत फॉर इल्म वी शुड यूज ओनली बुक्स बाय द मशाइख, बुक्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर। एक अच्छा सवाल है कि क्या हम नॉन मुस्लिम्स की बुक्स जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने मशाइख की बुक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। उसका जवाब ये है कि जो उसूल की बात है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो ये है कि अल कलिमतुल हिक्मा वालुन वालुल मुस्लिमी ठीक है। कल ही रात को आप क्योंकि आप लोगों के शोहरों के सामने ये हदीस पढ़ी थी तरावी के बाद, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जो हिकमत की बात है ना वो मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहां से भी वो मिले मोमिन को ले लेनी चाहिए ठीक है। हिकमत की बात मोमिन की एक गुमशुदा मता है, जहां से भी मिले उसको ले लेनी चाहिए, हत्ता के काफिर मुशरकों से भी। फिर हमारे मशायख ने इसकी तफसीर ये करी कि काफिर से भी ले सकते हैं, मुशरक से भी ले सकते हैं ठीक है ना, हिकमत की बात। लेकिन अब इसमें जो थोड़ी तफसील है वो ये है कि जब हम नॉन मुस्लिम से ये चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो अगर हमारी अपनी ग्राउंडिंग कुछ नहीं है दीन के अंदर, अकायद में, दीन में और जो दीन की बातें हैं उनमें अगर हमारा अच्छा बेस नहीं बना हुआ होता ना, तो फिर अक्सर ये हो जाता है कि उनकी हिकमत की बातें जो हमें अच्छी लग रही होती हैं हम वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो चीजें खिलाफ दीन होती हैं या खिलाफ शरा होती हैं या बेसिक अकायद के खिलाफ होती हैं हम उनको भी फिर अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं ठीक है ना। तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि नॉन मुस्लिम से, या ये कि इवन ऐसे मुस्लिम से कि जो कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, वो भी कभी बड़ी बड़ी हिकमत की बातें करते हैं। तो जब आप उनसे इन चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर जिसका अपना बेस स्ट्रांग ना हो तो फिर वो अच्छी बातें लेने के साथ साथ बुरी बातें भी अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मेजर नुकसान भी हो जाता है ठीक है ना, अकीदे का भी नुकसान हो जाता है, दीन का नुकसान हो जाता है और बहुत कुछ और भी मसले हो जाते हैं। इस वजह से एहतियात करनी चाहिए। अगर हमें अपने मशायख की तरफ से ये चीजें मिल रही हैं तो देखें उनसे जो हमें मिल रहा होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम होता है, वो भी तो बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो भाई उसी के ऊपर अगर हम मेहनत कर लें, उसी को अगर हम सही तरीके से समझ करके उस पर अमल करने की कोशिश कर लें, तो आपको कोई दुनिया की लाइब्रेरियां खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर जो है वो यानी दूसरे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नॉन मुस्लिम और जो फासे फाजर मुसलमान है उनकी उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से ना बेहतर और एहतियात, क्योंकि अकीदे का मामला होता है, दीन का मामला होता है, इस वजह से एहतियात यही है कि अपने मशायख के साथ ही इस मामले को रखें, किसी जगहों से ना लें। हाँ, अनलेस कि वो खुद आपको रिकमेंड करें कि भाई आप फलाने बंदे की बात सुन लें, फलानी चीज जो है वो पढ़ लें, तो फिर वो फिर एक और बात है। और ये चीज जो है ना वो बड़ी एसेंशियल है कि आपका अपने मशायख के साथ अगर इतना गहरा ताल्लुक है, ठीक है ना, यानी मजबूत ताल्लुक है, वो आपको कह रहे हैं कि आप इधर से पढ़ने, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि उनको पता है कि बेशक इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम अज कम इनका पूछने का ताल्लुक तो है ना हमारे साथ, निस्बत का ताल्लुक तो हमारे साथ है ना, तो अब अगर कोई गलत बात भी ये पढ़ लेंगे, गलत बात भी ये सुन लेंगे, तो ये पूछ लेंगे हमसे और ये इंशाल्लाह रास्ते से भटकेंगे नहीं। ठीक है ना, तो उस सूरत में फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसका ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं होता ना, तो उसके लिए फिर ये चीजें जो है वो बहुत नुकसानदेह हो जाती हैं और शैतान फिर इन चीजों को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है ना, उल्टा जो है वो दीन के खिलाफ लेकर के जाता है इन बातों को और बंदे को दीन से महरूम करता है। ठीक है, इस वजह से बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर मेड वगैरह ऑनेस्टी से काम ना करें, सामने से सही करें मगर पीछे से सही ना करें, तो उनके साथ कैसे मामला करना चाहिए? यानी जो मासियां वगैरह होती हैं, मेड्स होनी, तो उनके साथ क्या मामला करना चाहिए? उफ, ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है भाई। हाँ, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली एक मामला है कि जाहिर है हमारी कौम जो है ना वो झूठ रग रग रेशे, तो भाई ये लोग जिस कौम के जो बज़ाहिर इज्जतदार लोग होते हैं वो झूठ से इज्तनाब नहीं करते, बल्कि आदतन एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, तो अब उस कौम की जो मेड्स होंगी, मासी होंगे, मासियां होंगी, या चौकीदार होंगे, या जमादार होंगे, या वो कैसे सच्चे, वो कहाँ से सच्चे होंगे? ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही मामला चल रहा होता है घरों के अंदर के मासियां जो है वो काम नहीं कर रही होती हैं, गलत कर रही होती हैं, ये कर रही होती हैं, वो कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब उनके साथ भी यानी एक हद तक तो करना पड़ता है मामला, सख्ती का भी मामला कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन वो भी ना बस बहुत ही यानी एहतियात से करना चाहिए, यानी जुल्म के मुर्तकिब ना हो, जितना वो गलत कर रहे हैं तो उतना उसके हिसाब से ही उनके ऊपर सख्ती की इजाजत है, उससे ज्यादा सख्ती की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हम समझते हैं ना कि हम उनको डांट डपट करके और उनके साथ सख्ती करके जो है ना वो उनको ठीक कर देंगे, ये हमारी खाम ख्याली है। हम इस तरह से उनको ठीक नहीं कर सक रहे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वो ना वो हमारी निगाहों के सामने जो है वो चीजों को ठीक करने की कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी खौफ की वजह से किसी, लेकिन वो फिर जहां उनको फिर मौका मिलता है फिर वो वहां पर ना फिर हमें हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ना ये इसको बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करने का तरीका तो ये है कि आप उनके साथ बेशक उनसे काम करवाएं जो कि आपने उनसे सेटअप किया हुआ है, लेकिन बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ और अच्छे अल्फाज में, अच्छे बोल बोल करके उनके साथ काम करवाएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शुरू में वो बेशक वो बात नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना वो आप यानी आपके इस खुश इखलाक से ज्यादा चांस ये है कि वो मुतासर हो करके फिर वो आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना, हमने ये बहुत देखा है कि जो दुनियादार किस्म के लोग होते हैं ना और जो कि जिस तरह से दुनिया में सारे मामला चल रहे होते हैं उस तरीके से वो मामला करते हैं ना, तो अगला बंदा भी जो होता है ना वो उनके साथ हमेशा उखड़ा ही रहता है ना, वो भी यानी उसके जो मातहत होते हैं या उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं हमेशा उखड़े रहते हैं और हमेशा उसके साथ जो है ना वो एक टग ऑफ वॉर और एक टसल चलती रहती है। लेकिन अगर इंसान खुद नेक होता है और खुद जो है वो तमीजदार और खुद जो है वो हुकूक का ख्याल रखने वाला होता है ना और उनके साथ भी अच्छे से पेश आते हैं ना, तो बिल आखिर ऐसे लोगों को भी यानी काम करने वाले हैं, मासी तबका है और नौकर तबका है, उनको भी लिहाज आ जाता है और वो भी फिर ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो दूसरी जगह पर जाकर के बेशक وہ غلط کام کریں گے, لیکن ایسے نیک انسان کے ساتھ ان کا بھی معاملہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ کامیابی والی سچویشن والی کیفیت ہے نا, کہ بھائی ایک بندہ خود ہی جو ہے وہ شرم میں آ کر کے آپ کے ساتھ اچھا بن جائے, بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ایک لڑائی جھگڑا اور ڈانٹنا ٹپٹنا اور ایک مستقل ایک تماشا چل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر, ماسی کے ساتھ چل رہا ہے. بھائی جس کے گھر کے اندر بیوی شوہر کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, اس گھر کے اندر بچوں کی بھی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, اس گھر کے اندر خادموں کی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو سب آپ دیکھتے ہیں نا, پورا کا پورا گھر ہی جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. اس کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں نا تو پھر آہستہ آہستہ, جیسے کل بھی بات ہوئی تھی, آہستہ آہستہ پھر یہ سکون اور اطمینان ہماری ذات سے باہر کی طرف پھیلنا شروع ہوگا, اور پھر سپاؤسز کے ساتھ بھی مسئلے بہتر ہو جائیں گے, بچوں کے ساتھ بھی مسئلے بہتر ہو جائیں گے, حتیٰ کہ خادموں کے ساتھ بھی مسئلے بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن معاملہ اپنی اصلاح سے شروع ہوتا ہے. جہاں کوئی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا, دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتا رہتا ہے نا, وہاں پہ اسی طریقے سے مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ یہی تماشے چلتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے, چاہے کرونا سے آئے چاہے کسی طریقے سے بھی آئے نا. اور آج کل تو ویسے ہی کرونا سے بہت تیزی سے لوگ مر رہے ہیں, مر کسی اور چیز سے رہے ہوتے ہیں, لیکن نام بےچارے کرونا کا ہی آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ. اینی ویز, اگر میٹس کے ساتھ زیادہ نرمی والا معاملہ کریں, معاملہ ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ میٹس اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اصل میں نرمی کرنے والوں کو خود نرمی کرمی کرنی آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہ اس کے لیے کوئی محاورہ ذہن میں آ نہیں رہا, ٹپ آف دا ٹنگ پہ پر ہے, جیسے آپ یہ سمجھ لیں کیا کہتے ہیں. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو, ہم نرمی جیسے کرتے بھی ہیں نا کسی کے ساتھ, تو ہم ڈیڑھ نرمی کا لفظ میں نے ابھی جیسے ایجاد کر لیا ہے, ڈیڑھ ہوشیاری کا ایک لفظ ہمارے ایک ٹیوٹر ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے, ڈیڑھ ہوشیاری ہے نا, یعنی بندہ ہوشیاری تو کرے لیکن ایسی کہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, ہے نا, تو اس کو کہتے تھے وہ ڈیڑھ ہوشیاری, ہے نا. بھائی ہوشیاری کرنا ہے تو پوری ہوشیاری کرو نا, لنگڑی ہوشیاری کیوں کر رہے ہو. ہمارا یہی معاملہ ہے, ہم اگر نرمی بھی کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو وہ نرمی بھی جو ہوتی ہے نا وہ لنگڑی نرمی ہوتی ہے, ڈیڑھ نرمی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, ہے نا, ہم ادھر اپنی کوئی خاص عقل استعمال نہیں کر رہے ہوتے اور ہمارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا. تو اب اس طریقے سے جب ہم مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جبکہ خالق کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ برا ہوا ہوا ہوتا ہے, تو پھر ہماری نرمی جو ہوتی ہے نا وہ ڈیڑھ نرمی بن جاتی ہے, وہ لنگڑی لولی نرمی بن جاتی ہے. اور لنگڑی نوری لولی نرمی جو ہوتی ہے نا, تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لنگڑی لولی نرمی نہیں کر رہا, بالکل اللہ کی رضا کی خاطر اور بہت اچھی طریقے سے بہترین اخلاق کے مطابق نرمی کا معاملہ کر رہا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن یہ رول نہیں ہے, یہ ایکسیپشن کہلاتی ہے. ایکسیپشن دیکھیں, دنیا میں ہمیشہ رولز ہوتے ہیں اور ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی فیصلے ہوتے ہیں اور تکوینی فیصلے ہوتے ہیں, تو تکوینی معاملات کو ایکسیپشنز کہتے ہیں, تشریعی معاملات رولز ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ اگر ہم جائز طریقے سے صحیح طریقے سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں, کسی پہ احسان کا معاملہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا رول یہ ہے کہ اس کا ریٹرن ہمیں اچھا ملتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا رول ہے, لیکن ایکسیپشنز اللہ نے رکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کا ایک معاملہ بھی ایسا آتا ہے کہ صحابہ کے حضرت غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے, یا کسی اور کا یاد نہیں آ رہا, کہ وہ اپنے خادموں کے ساتھ بہت نرمی کیا کرتے تھے, تو خادم جو ہے وہ پھر ان کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانا شروع ہو گئے. تو ان کا معاملہ ایکسیپشن کہلائے گا, ٹھیک ہے, رول نہیں کہلائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو الٹا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ساری چیزیں الٹی کرنی ہوتی ہیں, تو اب نرمی بھی ہم الٹی کر رہے ہوتے ہیں. پھر What about teachers of deen and Quran who hit students sometimes harshly? This is in all madaris almost. جی مدارس کے اندر انفارچونیٹلی جو حفظ کے مدارس ہیں خصوصاً, تو وہاں پر بچوں کی جو مار پیٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کا یعنی ایک
मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब उसका यानी ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसका आप हल ये नहीं है कि जी आप मदारिस को बंद कर दें, ठीक है ना, या आप जो है वो इन टीचर्स को हटा करके जो है वो आपको जो और फॉरेन क्वालिफाइड किस्म के और जो जो बीकन हाउस के पढ़े हुए टीचर्स लेकर के आ जाएं, है ना। जैसे कि अभी पता नहीं किसी ने कोई वीडियो भेजी थी कहीं, देखी मैंने, कि वो बच्चे बैठे हुए हैं और उनका जो टीचर है ना वो भी उनके साथ बैठा हुआ है, बच्चा जो है एक बच्चा जो है वो नात पढ़ रहा है और टीचर साहब जो है वो देखने में कोई माइकल जैक्सन किस्म की कोई चीज लग रहे हैं, है ना, और साथ बच्चा बैठ करके जो है नात पढ़ रहा है। तो अब इस किस्म के टीचर्स के को आप लेकर के आ जाएंगे, अभी बड़ा वो बच्चों को मारेगा नहीं और बड़ा बच्चों के साथ अच्छा मामला करेगा, लेकिन उसका अकीदा क्या है और उसका वो किन किन की सुन्नतों के ऊपर अमल कर रहा है। अब ऐसे टीचर्स को ला करके आप मदारस में बिठा देंगे, जी बच्चों को कम से कम ही मारेंगे नहीं, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आपके बच्चों का क्या अकीदा रहेगा, क्या दीन रहेगा। तो भाई ये तो हल नहीं है, ना मदारस को बंद करना हल है, ना इन टीचर्स को रिप्लेस करके जो है वो मॉडर्न किस्म के इंटेलेक्चुअल टीचर्स ले आना, ना ये हल है इसका, ठीक है ना। तो अब इसका हल क्या है भाई, हल यही है जो कि हमारे मशायख करते हैं कि जी इन जो असातिज़ा कराम हैं इनके ऊपर मेहनत करते रहते हैं, इनको याद दहानियां कराते रहते हैं कि भाई ये तरीका नहीं है बच्चों को हिफ्ज करवाने का या बच्चों को जो है वो को पढ़ाने का, ये तरीका नहीं है, ठीक है ना, आप इसकी इसलाह करें, आप इसमें गलती कर रहे हैं। तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए, देखें ये जो हिफ्ज के टीचर्स हैं ना, तो ये भी तो इंसान ही है ना, इन्होंने कुरान हिफ्ज तो कर लिया है, लेकिन क्या इनके गुस्से की इसलाह हुई है, क्या इनकी रूहानी बीमारियों के कोई कोई किस कोई किसी किस्म का इनका तस्किया हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो कहां से ये कहां से सबर कर लेंगे? बच्चे के साथ सबर करना कोई आसान काम है ना, माँ बाप बताएं ना जरा, ये छोटा बच्चा जब वो बात नहीं मान रहा होता, जब सता रहा होता है, तो क्या आसान काम होता है बच्चे को नहीं मारना? कितना मुश्किल काम होता है, हालांकि वो आपका सगा होता है, आपके अपने गोद में वो पहले दिन से अस्पताल से लेकर के जो है वो सब कुछ माँ ने खुद किया होता है, उसके बावजूद माँ मार रही होती है अपने बच्चे को, है कि नहीं ऐसा, है ना, अपनी अपना खून होता है, अपना उसमें रात दिन उसने लगाया होता है, फिर वो उसको मार रही होती है। तो ये जो हिफ्ज के उस्ताद हैं, ये एक ऐसे बच्चे को कि जो ना उनका उनकी अपनी सगी औलाद है, ना उन्होंने इसको दूध पिलाया, ना उन्होंने इसके लिए जो है वो तकलीफें बर्दाश्त करी, फिर अब ये बच्चा जब उनकी कोई बात नहीं माने या उनको सबक ना सुनाए या उनको ऐसा ना करे जैसा कि वो चाह रहे हैं, उसको पढ़ाना, उसको सिखाना, है ना, तो अब इनके लिए उस बच्चे को ना मारना कोई आसान काम होगा? भाई ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हल है भाई, उस उस्ताद की अच्छी खासी तरबियत की जरूरत होती है, जिसका कि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, है ना। तो अब कैसे वो अपने आप को रोकेगा, कैसे बच्चों को नहीं मारेगा, है ना। तो इतना आसान काम कुछ थोड़ी है कि बच्चों को ना मारा जाए। शुडंट दे बी ट्रेन्ड बिफोर गेटिंग डिप्लॉयड एज उस्ताद अदर देन लेटर? आप बनाए ना कोई ऐसी अकेडमी जिसके अंदर के इन उस्तादों को जो है वो ट्रेन किया जाए, उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट करी जाए इनकी। क्या IBM कॉर्पोरेशन नहीं है ना हजरत, ठीक है, अपनी मनमर्जी नहीं चलती ना दुनिया में, अगर मेड वगैरह ऑनेस्टली से काम करें सही हो गया, ठीक है। नेक लोगों के बच्चे भी नाफरमानी करते हैं जी, तो क्या करें फिर, नेकी छोड़ देते हैं इसका मतलब? दिल की जुल्मत का असर तहरीर पर भी होता है, ये भी सुना है, तहरीर पर भी होता है। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, वो आप उससे रिलेटेड बात कर रही थी। कारी साहब कुरान ऑनलाइन सुनते हैं और भी आने तक और बारी आने तक बच्चे दूसरे गेम्स में चले जाते हैं, इस पर मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते, इसके वो बिल्कुल भी नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जो सिस्टम इस वक्त हुआ हुआ है ना, ये हमारे गुनाहों की सजा है, ठीक है, ये बहुत 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 बड़ी सजा है जो कि हमारे बहुत बड़े बड़े गुनाहों की वजह से हमें मिल रही है। तो इस वजह से ना बच्चों का इसमें कसूर नहीं है, बच्चों को हम ना विलायत कुबरा के दर्जे के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कि वो तो अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं, वो ऑनलाइन भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद को सुनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप बड़ों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो ऐसी विलायत के दर्जे पर फायद हों, आप बच्चों से ये कैसे तवक्को कर सकते, है ना। तो इस वजह से ना ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, तो पहली बात तो ये कि ऑनलाइन
कोई हल निकालें कि ये ऑनलाइन सारे काम नहीं हो सकते ना, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत है इसके अंदर, ये मारना जो है ना वो कोई हल नहीं है इसका, ठीक है, बल्कि मारने से मामला जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। टाइम काफी हो गया, तो पढ़ लेते हैं कम अज कम बाकी इसकी तशरीह जो है वो कल की क्लास में कर लेंगे। कि आगे फरमाते हैं सारे आमाल मजालिम, आमाल मजालिम और हुकूक के बदले में दे दिए जाएंगे मगर ईमान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, तो उसकी तो बड़ी तशरीह की जरूरत पड़ेगी, कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी बस इसको पढ़ लेते हैं कि तफसीर मज़हरी में मज़कूरा सब रवायात रवायात हदीस नकल करने के बाद लिखा है कि मजलूमों के हुकूक में ज़ालिम के आमाल दे देने का जो जिक्र आया है उससे मुराद ईमान के अलावा दूसरे आमाल, क्योंकि जितने मजालिम हैं वो सब अमली गुनाह हैं, कुफ्र नहीं, और अमली गुनाहों की सजा महदूद होगी बखिलाफ ईमान के कि वो एक गैर महदूद अमल है। इसकी जजा भी गैर महदूद यानी हमेशा जन्नत में रहना है, अगरचे वो गुनाहों की सजा भुगतने और कुछ अरसा जहन्नम में रहने के बाद हो। उसका हासिल यह है कि जब जालिम के अमाल अमाल सालिहा व अलावा ईमान के सब मजलूमों को देकर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ईमान रह जाएगा, तो ईमान इससे सल्ब नहीं किया जाएगा बल्कि मजलूमों के गुनाह इस पर डालकर हुकूक की अदायगी की जाएगी, जिसके नतीजे में ये गुनाहों का अजाब भुगतने के बाद फिर बिल आखिर जन्नत में दाखिल होगा और फिर यह हाल उसका दायमी होगा। साहिब तफसीर मजहरी ने फरमाया कि इमाम बैहकी ने भी ऐसा ही फरमाया है। कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ी और अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ में सिद्क़ से मुराद वो तालीमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, ख्वाह कुरान हो या कुरान के अलावा दूसरी तालीमात तालीमात अहादीस, और सद्दक़ बिही में सब मोमिनीन दाखिल हैं जो इसकी तस्दीक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं, कल इंशाल्लाह की कुछ तशरीह वगैरह कुछ डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पढ़ने को बैठने को जो वक्त दीन के लिए लगाया है सब को कबूल फरमाए बेहतरीन अजर के वास्ते के बदले में, और हमें इन बातों की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।